परमात्म स्मृति से करेंगे, क्योंकि विषय भी है कि हमारे दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता और ध्यान का क्या महत्व है। तो सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, मन की शांत स्थिति, चारों ओर शांति के प्रकंपन, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आप सभी इस मीडिया कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर भावनाओं के साथ आए हैं। जीवन में सदा ही भाग दौड़ चलती रहती है और हम जीवन के यथार्थ रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। इन 5 दिनों में ये जो सुबह का सत्र रहेगा वो विशेष आत्मिक उन्नति को लेकर, नैतिकता को लेकर, उत्थान को लेकर के रहेगा। हम सबको ये बात की समझ तो है कि हम शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति है, परंतु आवश्यकता है अनुभव की। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा एक अचर अमर अविनाशी सत्ता, इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि रूह और जिस्म का अजीब इत्तफाक है, उम्र भर साथ रहे पर रूबरू न हो सके। आत्मा और शरीर दोनों का घनिष्ठ संबंध, परंतु जीवन पर्यंत आत्मा शरीर को और शरीर आत्मा को अनुभव नहीं कर पाता है। और ये 5 दिन आपको इसी अनुभव की गहराई में ले जाएंगे। अनुभव कीजिए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये शरीर मेरा एक वस्त्र की तरह है, आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली और मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। मैं शांति पुंज शांत स्वरूप आत्मा हूं। परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है उनसे शांति की किरणें उतर उतर कर मुझ पर पड़ रही हैं। प्रातः काल के सूर्य के किरणों की भांति मेरा मन आनंदित है। और आज के चिंतन को सुनने के लिए मैं आत्मा पूर्ण रूपेण तैयार हूं। इस भाव के साथ म्यूजिक बंद कर देंगे। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते हैं। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किस ने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है कोई तो छीन न पाया है, जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिकरात है, सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर के साथ का अनुभव करते हुए आज के चिंतन को हम प्रारंभ करेंगे और इस बात का संकल्प लें कि विशेष ये राजयोग मेडिटेशन के सभी सत्र हम बहुत गहराई में जाकर के करेंगे। शांति शांति शांति, ओम शांति। आज आप सभी का प्रथम दिन के सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो विषय लिया गया है वो है कि किस प्रकार हमारी दैनिक दिनचर्या में हम ध्यान को और आध्यात्म को महत्वपूर्ण स्थान दें। क्योंकि जैसे शुरू में भी कहा कि हम बस भाग रहे हैं, है ना, और कभी भी कुछ पल के लिए रुक करके हमें ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। बस हम दौड़ रहे हैं। तो देखिए, जो दौड़ सकता है ना, तो वो कुछ पल के लिए रुक भी सकता है। जैसे समुद्र की लहरें बाहर बहुत चंचल स्वरूप में दिखाई दे रही हैं, लेकिन समुद्र भीतर बहुत शांत है। ऐसे ही हर इंसान को कुछ पल के लिए कहें या फिर निद्रा को लेकर के कहें, शांति में जाने का मन करता है। क्योंकि हमारा असली जो स्वभाव है वो शांति है, प्रेम है, आनंद है, शीतलता है, शक्ति है, खुशी है, है ना। तो सब खुश रहना चाहते हैं? खुश रहना चाहते हैं? चाहते हैं? चाहते हैं तो हाथ उठाइए, जो जो खुश रहना चाहते हैं। अच्छा, चाहते हैं। कौन कौन सदा खुश रहते हैं वो हाथ उठाइए। अब सदा मीडिया वाले सदा खुश रहते हैं, बहुत अच्छा, अपने लिए ताली बजा लीजिए, है ना, जोरदार ताली बजाइए, आप अपने घर में आए हैं। तो कहते भी हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं। हमने हाथ तो उठाया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अंदर लगता है कि नहीं, सदा तो खुश नहीं रहते हैं, कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, बताइए ना। ये विचार तो आता है कि कभी तन की कोई प्रॉब्लम आती है, कभी धन ऊपर नीचे होता है, कभी जिन संबंधों को लेकर के हमने बहुत आत्मिक भाव रखा, प्यार का भाव रखा, शादी की, शादी के पहले के जो विचार थे कि शादी हो रही है, हम सदा खुश रहेंगे अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ, हमारा जीवन दूसरों के जैसा नहीं होगा, ये पति पत्नी तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं रहूंगा, मैं ऐसे नहीं रहूंगी, ये विचार तो आते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम आते हैं तब हमें फील होता है कि जो हमने सोचा था वो मेरे साथ घटित नहीं हो रहा है, जो बातें हो रही हैं उसका प्रभाव कहीं न कहीं मेरे मन पर पड़ रहा है, चाहे तन का, चाहे धन का, चाहे संबंधों का। तो सबका प्रभाव मेरे मन पर पड़ रहा है, और जब मन दुखी हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तब कोई समाधान हमें नजर नहीं आता कि मैं अब अपनी बैटरी को चार्ज कैसे करूं। मोबाइल का हम सबको पता है, आप जैसे ही अपने कमरे में एंट्री लिए होंगे यहां पर आकर के भी, तो सबसे पहले आपने मोबाइल को मैं कहां चार्ज करूं वो चार्जर पॉइंट ढूंढ ली होगी कि अच्छा ये है वो स्थान, यहां मुझे चार्ज करना है, तुरंत ढूंढा है क्योंकि हमारा कनेक्शन है मोबाइल से। अब हम सभी डिस्चार्ज होते हैं, कैसे पता चलता है, इसका पैरामीटर क्या है कि मैं डिस्चार्ज हो चुकी हूं? मोबाइल में तो आपको पता चल जाता है ना कि मोबाइल टोटली डिस्चार्ज है, एक लाइन भी बची रहती है तो कहां ढूंढे कहां चार्ज करें। तो हम डिस्चार्ज हुए कैसे पता चलता है? कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, कहीं उदासी, कहीं एक क्रोध की लहर, तो हमें महसूस होता है कि हम लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये पैरामीटर है इसका। और कई बार कोई बात भी बड़ी सरलता के साथ हमें कहता है लेकिन मेरा मन दुखी है, मैं डिस्चार्ज हूं, तो तुरंत रिएक्ट करते हैं हम लोग। फिर सामने वाला कहता है कि मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना क्रोध में आ गए या इतना चिड़चिड़ा रहे हैं? तो फिर हम उन्हें कहते हैं देखो मैं चाहती नहीं थी, मैं चाहता नहीं था, लेकिन मेरे जीवन की ये प्रॉब्लम चल रही है ना, इसलिए मैंने आपके ऊपर रिएक्ट कर दिया। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि जो हमारे सीनियर हैं, बॉस हैं हमारे, हम एक रिस्पेक्ट के चलते उन्हें नहीं बोल पाते हैं, आता तो है गुस्सा लेकिन हम उन्हें नहीं बोल पाते हैं, तो हम क्या करते हैं फिर घर आकर के अपनी पत्नी के ऊपर या बच्चों के ऊपर उस आवेग को निकालते हैं। पत्नी को लगता है, बच्चों को लगता है क्या कह दिया ऐसा कुछ, बच्चे को तो लगता है कुछ भी नहीं बोला मैंने लेकिन लगा एक तमाचा गाल पर, उसने कुछ कहा था कि पापा आते समय ना मुझे ये चीज चाहिए थी, स्कूल ले जाना है कल, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, तो लेके आना आप, और आप भूल गए क्योंकि आपके माइंड में वही थॉट चल रहे थे बॉस ने आज आपको डांटा है, आप भूल गए। अब बच्चा तो अपने पापा के साथ ही जिद्द करेगा ना, और वो पापा के पास जाता है पापा लेके आए, तो पापा कहते हैं नहीं, और फिर वो और जिद्द करता है, तो फिर उसको डांट पड़ती है या गाल में तमाचा लग जाता है, वो रोने लगता है। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस चल रहा है हम लोगों का कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं कर पाए तो हमने क्या किया, जिनके ऊपर हमने अपना अधिकार समझा उनके ऊपर गुस्सा कर दिया। अब वो बच्चे के साथ हमारा संबंध सुधरने वाला है कि बिगड़ने वाला है? अब बिगड़ेगा ना। और ये घटना अगर 8-10 बार 50 बार हो गई, अब बच्चा हमेशा ही आपको कुछ बोलने में डरने वाला है। बचपन से ही शुरुआत हो जाती है क्योंकि हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, हमारे मन में दर्द है, तो हमने वो दर्द पास ऑन कर दिया अपने परिवार के ऊपर, जिस परिवार के लिए हमने सोचा था कि ये सबसे प्रथम है मेरे लिए, और उसको ही अब हम दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर रख रहे हैं। तो तो ये प्रथम सत्र जो होता है इसमें आपके दैनिक जीवन में पॉजिटिव थॉट और मेडिटेशन के क्या आवश्यकता है और ये क्यों जरूरी है, इस पर ये विचारों की धारा बहेगी और ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक भी है। हेल्दी डाइट चाहिए आपको, एक्सरसाइज करना है आपको, क्यों? जैसे कमर में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, 10-15 दिन, 1 महीने हमने सहा भी उसको, लेकिन फिर लिमिट क्रॉस कर गई तो हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को कहा 1 महीने से लगभग कमर में बहुत दर्द है, घुटने में बहुत दर्द है, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर ने कहा मैं कुछ दवाई तो लिख करके दे रहा हूं, लेकिन आपका एक तो वेट बढ़ गया है, मैं सब अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूं, कई बातें वो एक्सपीरियंस आपके भी हो सकते हैं। तो कहा वेट बढ़ गया है, इसीलिए आप रोज एक्सरसाइज कीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए। तो मैं डॉक्टर से पूछती हूं कि हेल्दी डाइट में क्या लूं बताइए, तो कहेंगे सुबह है ना आप ये मिर्च मसाले वाला तला ये सब मत लीजिए, आप फल खा लीजिए या अंकुरित ले लीजिए या सलाद ले लीजिए, ये हेल्दी डाइट है। फिर एक्सरसाइज में क्या करूं, तो डॉक्टर ने कहा आसन प्राणायाम करो या इसके लिए भी समय नहीं मिलता तो 1 घंटा आप वॉकिंग कर लो, ये भी बहुत है। तो मैं कहती हूँ ठीक है, और मैंने 15 दिन एक्सरसाइज भी की या प्राणायाम किया, आसन किए या वॉकिंग की, तो मुझे अच्छा लगा और हेल्दी डाइट भी ली, नहीं लिया 15 दिन तक, लेकिन उधर घर में पराठा बन रहा था, पोहा बन रहा था, उपमा बन रहा था, इडली बन रही थी, है ना? लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा है कि हेल्दी डाइट लेना, कंट्रोल कर लिया 15-20 दिन तक, लेकिन फिर लगा नहीं ये हमेशा के लिए तो हो नहीं सकती रूटीन, आज तो पराठा खाई लेती हूँ, आज तो इडली खाई लेती हूँ, आज तो समोसा खाई लेता हूँ, खाई लेती हूँ, और फिर वो रूटीन छूटी मेरी, एक्सरसाइज भी, वॉकिंग भी, हेल्दी डाइट भी। फिर 15-20 दिन के बाद मुझे महसूस हुआ कि फिर कमर दर्द, फिर घुटने में दर्द, तो मुझे लगा ये दर्द भी चलता रहेगा, मेरा भोजन भी ऐसे ही चलता रहेगा, गोली लेते रहो, लेकिन अब दवाइयां भी आराम नहीं दे पा रही है मुझे। तो मुझे समझ में आया कि करना तो पड़ेगा, नहीं तो दर्द के साथ जिंदगी चलती रहेगी। तो ये तो फिजिकली जो हमें प्रॉब्लम होती है उसकी बात शेयर कर रहे हैं, लेकिन मन में भी तो दर्द होता रहता है कभी कभी। और भाई लोग ज्यादातर क्या करते हैं, भाइयों की संख्या ज्यादा है, मीडिया में ज्यादा रहते भाइयों की संख्या, भाई लोग क्या करते ज्यादातर, बहनें तो हम लोग रो देती हैं, है ना, भाई क्या करते हैं, रोते नहीं है, आंसू नहीं आते इनके, आते हैं लेकिन बचपन से इनके अंदर ये बात बैठ जाती है, अगर आप बाहर खेल करके आए, आपको किसी ने धक्का दिया, आपको चोट लग गई थी, आप रोते रोते आए, विशेष भाइयों की बात बता रही हूं, तो जब आप घर में एंट्री ही करते ना रोते रोते, तो माँ क्या कहती है, लड़की हो क्या, लड़की जैसे रोते रहते हो, ये बात कईयों ने सुनी होगी, लड़की हो क्या, बहन हो क्या, बहन जैसे रो रहे हो, अरे तुम क्यों रो रहे हो, तुमको रोना शोभा नहीं देता। और शायद बचपन से ये जाता रहा अंदर, मैंने कईयों को देखा, इधर कई बार माँ की भी डेथ हो जाती ना, तो कई जगह हमारा जाना होता है, तो मैं देखती हूँ बच्चियाँ तो रो लेती हैं लेकिन भाई लोगों की आंखों से आंसू नहीं आते, लेकिन क्या उन्हें माँ गई है तो दर्द नहीं हो रहा होगा क्या? लेकिन उन्होंने आंसू नहीं गिराए, अंदर दर्द था, रात को अकेले में रो लिए होंगे लेकिन सबके सामने नहीं रोए। तो वो दर्द अंदर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और कई बार फिर वो क्रोध के या उदासी के आवेग के रूप में भी बाहर दिखाई देता है। हमारा जो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है ना, सच कहूं तो ये सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। एक गीत सुना था कि किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है ना। हमारे मेडिटेशन सेंटर्स पर कई भाई बहन आते हैं और यहाँ 7 डेज का मेडिटेशन कोर्स होता है, तो वो सोचते हैं कि आध्यात्मिकता, मेडिटेशन, पॉजिटिव थॉट, इसको हम अपने जीवन में स्थान दें, तो इस भाव से वो आते हैं, मिलते हैं हमसे, फिर कहते हैं हमको यहाँ का कोर्स करना है ब्रह्मा कुमारी इसका, राजयोग मेडिटेशन का। तो हम कहते हैं हाँ जरूर आइए, कल से ये टाइम आपको दे रहे हैं। पहले दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम शेयर करते हैं वो, फिर दूसरे दिन उनको थोड़ा फ्री लगता है हम लोग से बातचीत करना, तो दूसरे दिन आते हैं, हम शुरू ही करते हैं, 2-3 मिनट ही बात होती है, तो अपना दर्द बताने लगते हैं। 1 घंटे का वक्त दिया था हमने उनको, लेकिन 1 घंटा वो ही अपना दर्द सुनाते रहते हैं, हम बोल ही नहीं पाते क्योंकि इतना दर्द है उनके अंदर। दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे 7 दिन हो जाते हैं। मैं सुनती हूँ, मैं अपना अनुभव बता रही कि निकल जाए इनके अंदर का दर्द। 7 दिन हो जाते वही हमें सिखाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। 7 दिन के बाद कहते हैं दीदी 7 दिन के लिए मैं यहाँ आया था और मैंने ही बोला है, अभी तो आपने कुछ भी नहीं बोला, हम तो मौन में सुन रहे थे, अब आप मुझे मेडिटेशन कोर्स कराइए। 7 दिन और आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अंदर का दर्द निकलना बहुत जरूरी है। और वो जब दर्द निकल जाता है तब उनको लगता है अब हल्केपन से मैं सुन सकता हूं यहां की बातों को। क्यों? क्योंकि किसी के पास भी आज सुनने का वक्त नहीं है ना, किसको सुने? कई बार आपने खुद अनुभव किया होगा, कई बार किसी ने आपके 2-3 घंटे लिए होंगे अपने जीवन के बारे में सुनाने में, तो 4th दिन आप उससे कटने लगते हैं कि ये मेरा 1 घंटा खाएगा, इसको देखते ही दूसरा रास्ता बदलो, मेरे पास समय नहीं है। और आज किसी के पास भी समय नहीं है, लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी दीदियां उनकी बातों को बहुत प्यार से सुनती हैं तो उनकी काउंसलिंग होने लगती है, और हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि जो आपका दर्द है उसको हम किसी को बताएंगे नहीं, तो उन्हें महसूस होता है कि हाँ दर्द डस्टबिन में चला गया है, सही जगह गया है, है ना? और अब ये कचरा निकल गया है ना, तो भीतर मन शांत होगा। कौन सोच सकता है कि कलयुग में किसी के सामने चैलेंजेस नहीं आएंगे? बताइए, अचानक अचानक की घटनाएं घटित होती हैं, अचानक। कल का ही मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सुनाऊं कि मैं 16 तारीख से यहाँ पर हूँ और अचानक कहाँ बैठने में, कहाँ उठने में, कहाँ गाड़ी में बैठने में कुछ हुआ कि मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो गया, कि रॉबर्ट जैसे उठने की स्थिति हो रही थी, करवट नहीं बदल पा रही थी, अचानक हुआ हूँ। लेकिन कब हुआ मुझे नहीं मालूम, अचानक हुआ हूँ। तो मुझे भी लगा आज मॉर्निंग का सत्र लेना है तो क्या मैं ऐसे जाऊंगी क्या, मैंने रॉबर्ट जैसे चलते चलते, नहीं दवाई ले लेनी चाहिए, और दवाई ले ली और आपके बीच में उपस्थित हो गई, तो वो तन का रोग था। थोड़े देर के लिए वो बात आई, लेकिन अंदर में कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में, एक लक्ष्य पक्का है हमारे जीवन का, तो कई बार जब मन सशक्त होता है तो तन साथ देता है, और जब मन में ही डिप्रेशन है, निराशा है, उदासी है, तो फिर ऐसा लगता है नहीं, बहुत तकलीफ है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा ने हमारे मन को शक्तिशाली हम कैसे बनाएं, इस कलयुग में रहते हुए भी ये कला सिखलाई है। एक बार मुस्कुराइए, बहुत प्यार से बड़े गंभीर होके बैठे हुए हैं, है ना, मुस्कुराइए। जिस बात को आप अपने जीवन में लगातार स्थान देंगे वो आपके जीवन का अंग बन जाएगी। ठीक, अगर गंभीर रहने को, अभी देखो मैं गंभीर हो जाती हूं एकदम, कर नहीं पाऊंगी अभी, ठीक है, मंच पर भी हूं पर इसको स्थान दे दिया है अपने जीवन में, तो कोई कहता है कि अरे दीदी पता भी नहीं चलता है कि आपको दर्द हो रहा है, तो मुझे बताना पड़ता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बचपन से जो एक स्थान बना मुस्कुराहट का, तो वो जीवन का अंग बन गया। फिर मुझे ही अपना चेहरा गंभीरता वाला अच्छा नहीं लगेगा, उदासी वाला अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कब क्या करना है ये भी तो समझ चाहिए, कब क्या करना है। किसी ने शरीर छोड़ दिया, वहीं जाके हम केवल एक मुस्कुराते हुए चेहरे में रह रहे हैं तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। उस समय कैसे रहना पड़ेगा? गंभीर रहना पड़ेगा, गंभीर रहना पड़ेगा। लेकिन किसी किसी को गॉडली गिफ्ट मिली हुई होती है, गॉडली गिफ्ट होती है वो। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पॉजिटिव थॉट है, ये हेल्दी डाइट है, और मेडिटेशन एक्सरसाइज है, मन की एक्सरसाइज है, जिससे हम सदा प्रफुल्लित रह सकते हैं। हमारे पास कोई प्रेशर कुकर जैसा कोई सिस्टम नहीं है कि हमारे जीवन में कोई प्रेशर आया करके वो प्रेशर निकल गया और हम फिर मुस्कुराते हुए हो गए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। कई बार समझाएंगे ना, नहीं नहीं आप ज्यादा सोचा नहीं करो, तो क्या कहेंगे, दीदी वो ना मंच में अच्छा लगता है बोलना आप लोगों का, लेकिन हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है। तो हम उन्हें कहते हैं, हम भी दुनिया से भागे हुए लोग नहीं है, बहुत बड़ा संगठन है ये, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, जिस फील्ड में भी आप हैं, आपका संगठन जिस ऑफिस में आप जाते हैं फिर भी छोटा होगा, और ये संगठन बहुत बड़ा संगठन है। तो क्या इसमें सबके संस्कार एक जैसे रहते क्या? सबके साथ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले अभी हम अपनी चीफ से मिल रहे थे, आदरणीय मोहिनी दीदी जी, तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतना बड़ा संगठन है, तो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग का प्रोग्राम चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि रास्ते में सभी प्रकार की गाड़ियां चलती हैं, महंगी गाड़ियां भी हैं, सस्ती गाड़ियां भी हैं, 4-व्हीलर भी हैं, 2-व्हीलर भी हैं, बस भी हैं, लेकिन सभी रास्ते में चल रही है ना, सब अपना अपना रास्ता सेट कर लेते हैं, अपनी अपनी चाल सेट कर लेते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही हमें जिंदगी में संगठन में रहते हुए भी अपने आप को हमें कैसे संभालना है, ये कला आनी चाहिए, बाहरी वायरस का मेरे ऊपर इफेक्ट न पड़े। जैसे कई बार ठंड के समय में माउंट आबू आना होता है, तो इतने लोग आए, 50, 100, 20 हजार लोग आए, लेकिन क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने 100 का ग्रुप लाया, तो 100 के ग्रुप में 99 तो अच्छे रहे, लेकिन मान लीजिए मुझे ही खांसी हो गई, सर्दी हो गई, बुखार हो गया, तो मुझे लगा ये 99 अच्छे रहे, मुझे क्यों ये प्रॉब्लम आ गई, बाकी को तो कुछ नहीं हुआ, 99 अच्छे थे। तो क्या था कि मेरी रेजिस्टेंस पावर इतनी पावरफुल नहीं थी, इसीलिए बाहरी वायरल ने मुझे इफेक्ट कर दिया। ठीक है, मैं भी स्ट्रांग होती तो मुझे इफेक्ट नहीं होता। अब मैं सोचती हूं सब इंजॉय कर रहे हैं, मैं ही बिस्तर पे लेटी हुई हूं। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने शरीर की रेजिस्टेंस पावर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। उसके लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, चाहे मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति लूं, चाहे होम्योपैथिक, चाहे एलोपैथिक जो भी है, चाहे फिर प्राणायाम एक्सरसाइज जो भी। तो रेजिस्टेंस पावर बढ़ी तो चाहे ठंड भी रही तो भी मैं शक्तिशाली रहूंगी। ऐसे ही आप जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत चैलेंजेस आते हैं आपके सामने, और मीडिया वालों को तो है ना, अनुभव तो हम लोगों को भी है। आज मैं भी 25 वर्ष से मीडिया कॉन्फ्रेंस में आती ही हूँ, और जब कई एक्सपीरियंस अपने शेयर करते हैं तो पता चलता है रात रात को जागना पड़ता है। हम लोग कहते हैं टाइम टेबल सेट करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अमृत वेले उठो, और आपको सोना ही पड़ता है 3 या 4 बजे, नींद तो कंप्लीट करनी है ना। तो आप कहेंगे हमसे ये सब नहीं हो पाएगा, न मेडिटेशन हो सकता है, न पॉजिटिव थिंकिंग के क्लास हो सकती है, न मॉर्निंग वॉक हो सकता है, ये हम सब नहीं कर सकते, क्योंकि यहां सुबह का सत्र भी आपका चलेगा। और मैं आपको दिल से कह रही हूं कि आप ये जो मॉर्निंग वाला सत्र है ना, मिस मत कीजिएगा, जो आप लोगों का कल से 7 बजे से शुरू हो जाएगा, उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि यही आपके सामने एक नई चीज 5 दिनों में उभर करके आएगी, कि मीडिया में कार्य करते हुए भी अपने आप को सशक्त कैसे करें। कहते ना जब जागे तभी सवेरा, तो मीडिया वालों के लिए छुट्टी दे रहे हैं क्या, जब जागे तभी सवेरा है ना। और अगर आपकी नींद मतलब कंप्लीट कर दी है, आप 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, नींद पूरी हुई 4-5 घंटे की, 6 घंटे की, और उसके बाद आप थोड़ा स्नान वगैरह करके 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं, या 10 मिनट भी पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस करते हैं, तो आपको लगेगा कि हेल्दी डाइट मुझे प्राप्त हो गई है। अब दिन भर की दिनचर्या में मैं फुल चार्ज होकर अपने कार्यों को कर सकती हूं या कर सकता हूं। तो देखिए, जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन, आजकल डिप्रेशन, हाई डिप्रेशन है ना, पहले कहते थे तनाव, फिर कहने लगे हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, हाई डिप्रेशन, कितने शब्द निकल गए, ये सब है क्या, है क्या? दर्द ही है केवल मन का, और इसी मन के दर्द के कारण फिर हमको नींद भी सही नहीं आती है। हमने हमारे डॉक्टर हैं मनोरोग चिकित्सक, उनसे सुना था कि पूरे विश्व में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो आपको तनाव से या डिप्रेशन से या हाई डिप्रेशन से दूर कर सके। जो दवाइयां निकली हैं जो मनोरोग मनोरोगी है उनके लिए, वो केवल सुलाने वाली है, यानी जितने देर आप सोएंगे उस गोली के प्रभाव में, उतने देर आप नेगेटिव या वेस्ट थॉट से दूर रहेंगे, और नींद अच्छी होगी तो फिर उस थॉट से भी दूर होंगे, और शायद धीरे धीरे आप डिप्रेशन से मुक्त हो जाएं। लेकिन लगातार यदि हम नींद की गोलियां खाते रहें तो क्या ये सही समाधान है समस्या का? मैं ये नहीं कहती कि जो नींद की गोलियां खाते वो आज से खाना बंद कर दे, हाथ भी नहीं उठवाने वाली है भरी सभा के बीच में। लेकिन आजकल मनोरोग चिकित्सक इस बात को बता रहे हैं कि आप पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास भी कीजिए, मेडिटेशन भी कीजिए और दवाइयां भी खाते रहें और धीरे धीरे आपकी दवाई क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। लगातार खाते रहने से फिर उन नींद की गोलियों का असर भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। फिर वो बढ़ा देते हैं डोज और उसका भी हमारे शरीर के ऊपर कोई बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है ऐसा तो नहीं है। लेकिन बंद मत कर देना ना, जो भी लेते हो बंद मत करना, डॉक्टर की राय से ही करना है। लेकिन मैं क्या बात कहने जा रही हूं कि पॉजिटिव थॉट और मेडिटेशन को अपने जीवन में आपको महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। तो खुश रहना है इसीलिए नहीं कि मुझे दूसरों को खुश करना है, इसीलिए कि मैं आत्मा स्वयं स्वयं से प्यार करती हूं, मुझे आंतरिक रूप से खुश रहना है। जीवन में कभी कभी लव और लॉ दोनों का बैलेंस जरूरी रहता है, चाहे बच्चों के लिए, चाहे आप किसी पद पर हैं तो आपको अपने जूनियर के लिए भी लॉफुल रहना पड़ता है। लेकिन मैंने कोई पावरफुल होकर के बात कही लेकिन वो बात उनके मन में इस तरीके से न बैठ जाए जो वो मुझे बद्दुआ ही देते रहे। आज इतना बड़ा संगठन है यहाँ का, सबके संस्कार अलग अलग होते हुए भी हमारी जो बड़ी दादियां थी, चाहे दादी प्रकाशमणि जी, चाहे दादी जानकी जी, चाहे गुलजार दादी जी, हम सबसे मिले हैं तो हमें अनुभव होता था कि हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। और जब दादियों से पूछा जाता था कि आप इतने हार्मनी के साथ कैसे रहते हैं दादी, तो दादियां कहती थी कि हम हार मान लेते हैं इसीलिए हम हार्मनी से रहते हैं। कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन करता है ना किसी बात को लेकर, कर रहा है तर्क, शब्दों के माध्यम से, बातों के माध्यम से भले वो हमें हरा दे, लेकिन उसे भी अनुभव होता है कि ये चुप रह करके जीत गए, चुप रह करके, मौन रह करके जीत गए और हम तर्क करते करते हार गए। हारना क्या होता है? जब मन खुशी नहीं है, अपने जीवन का सही आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं, इतना अच्छा जीवन मिला है क्या केवल भागने के लिए मिला है? मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप बहुत 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 भाग्यशाली हैं जो आप 5 दिन निकाल करके यहां पर आए हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। कईयों की तो टिकट बनी होगी आधे घंटे पहले या 5 मिनट पहले उनका आने का प्रोग्राम कैंसिल हुआ होगा और किसी का नहीं हुआ होगा। हम बहनें इसको बखूबी जानती हैं कि किसी के बदले कोई आ गया होगा, ऐसा भी हुआ होगा। देखो आप मुस्कुरा रहे हैं कि भाई बर्थ तो है, हाँ एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। अब हम बहनों को भी लगता है कि देखो अब ये नहीं जा रहा है 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले, चलो इनको फोन करते हैं चलेंगे क्या। हम उनको कहते हैं एक सीट है, वैसे रॉन्ग है रेलवे के हिसाब से कि किसी के बदले किसी को ले जाना, बिल्कुल गलत है। लेकिन बर्थ है, पैसा भी वापस अब नहीं मिलने वाला है, तो हम कहते चलो आप आ जाओ ना, देखते हैं अब कुछ करना पड़ेगा तो देख लेंगे, ऐसा भी हो जाता है। तो जो राइट टाइम में आधे घंटे के पहले तैयार हुआ होगा या 15 मिनट के पहले, उसको परमात्मा बहुत प्यार करता है, और जिसको परमात्मा प्यार करता है ना, उसके जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई कहते हैं ना, हम भगवान को याद करते हैं, हम भगवान को प्यार करते हैं। हम लोग कहते हैं हमको भगवान प्यार करता है। भगवान प्यार करता है, इसीलिए उस प्यार को बांटने की कला भी आ जाती है। तो अगर मुझसे भी कोई गहराई में पूछता है कि दीदी मेडिटेशन है क्या, आप थोड़ा सा कम शब्दों में हमें समझा दीजिए, आप 4 दिन तो डिटेल में जाएंगे, इसकी गहराई में जाएंगे कि कैसे स्वयं की सत्ता का अनुभव करना है, परम सत्ता का अनुभव करना है, राजयोग मेडिटेशन क्या है, उससे कैसे 8 पावर्स हमारे अंदर डेवलप होती है, हमारे जीवन के कार्मिक अकाउंट्स कैसे हमारे सामने अचानक आते हैं, उसको कैसे फेस करना है, ये सब आप मॉर्निंग सत्र में सुनेंगे। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि मेडिटेशन क्या है, तो मैं केवल है ना एक शब्द में ही कहती हूं, मेडिटेशन माना प्यार। मेडिटेशन माना प्यार, याद रखेंगे ना, मेडिटेशन माना प्यार, लव। अब प्यार करना तो हमें आता ही है, आज तक हम प्यार तो कर रहे थे ना। माँ को कहा गया क्या कि बच्चे को कैसे प्यार करते आओ सिखाते हैं? बच्चे को कहा गया क्या कि माँ को कैसे प्यार करना है आओ तुम्हें सिखाते हैं? पति पत्नी को कहा गया क्या? नहीं, ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये। ऐसे ही आत्मा का परमात्मा के प्रति प्यार, ये मेडिटेशन। तो कहेंगे नहीं, उसमें जब ध्यान में बैठते ना तो हमारा मन बहुत भागता है, बहुत इधर उधर दौड़ता रहता है, स्थिर नहीं हो पाता। उसके पीछे एक ही कारण है कि जैसे देखिए, बच्चे को पता है ये मेरी माँ है, बच्चे को पता है ये मेरे पिताजी हैं, माँ को पता है ये मेरा बेटा है। माँ को कहा गया नहीं नहीं ये बेटा नहीं, ये वाला बेटा है, 4 साल का हो गया, ये नहीं है, ये वाला है। नहीं, प्यार हो चुका है, पैदा हुआ बच्चे से प्यार हो चुका है। हम परमात्मा से जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? उसके पीछे कारण एक ही है। हो सकता है कि हमें परमात्मा का सही परिचय ही ना, ये हो सकता है ना कारण। क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें आपको ये 4 दिन आगे के सत्र में, मॉर्निंग के सत्र में क्या दिया जाएगा वो मैं आपके आगे बात रख रही हूं। जैसे देखिए, कोई फिल्म आती है तो 1-2 मिनट का फिल्म का क्या दिखाया जाता है? ट्रेलर। आपको ट्रेलर पसंद आ जाता है तो क्या देखते हैं आप? पूरी फिल्म देखते हैं ना, 3 घंटे की। लेकिन ट्रेलर कितने मिनट का रहता है? 1 या 2 मिनट का। तो आज ट्रेलर चल रहा है कि मॉर्निंग के सत्र में आपको क्या दिया जाएगा। अब ट्रेलर पसंद आ जाएगा तो आप पूरी 4 दिन वो फिल्म देखेंगे कि आज के सत्र में क्या है, आज के सत्र में क्या है। तो हो सकता है कि परमात्मा से हमारा प्यार इसीलिए नहीं हो पा रहा होगा कि बस हम कहते आए हो गॉड इज वन, सबका मालिक एक है, लेकिन वो एक कौन है, उसका परिचय हमें ना हो, इसके कारण हम उनसे नहीं जुड़ पा रहे होंगे। तो आपको उस परम शक्ति परमात्मा का यथार्थ परिचय मिलेगा और फिर संबंध जुड़ेगा और फिर हम परमात्मा के साथ प्राप्तियों की अनुभूतियां कर सकते हैं। वो मेरे पिता हैं, याद रखिए, परमात्मा मेरे क्या है? पिता हैं। तो पिता की प्रॉपर्टी पर किसको हक होता है? बच्चे को। तो आप कौन है सब? कौन है सब? बच्चे। हो सकता है हम बिछड़ गए हो। जैसे मान लीजिए हमारे पिता अरबों की संपत्ति के मालिक, लेकिन मैं बिछड़ गई उनसे, तो अरबों की संपत्ति की मालिक होते हुए भी मैं बहुत छोटे से मकान में रह रही होंगी क्योंकि मेरा मेरे पिता के साथ कनेक्शन नहीं है, बचपन में बिछड़ गए थे। ऐसे ही हमारे पिता परमात्मा शांति के सागर हों, प्रेम के सागर हों, आनंद के सागर हों, और उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरी, लेकिन मेरा कनेक्शन न होने के कारण हो सकता है मैं प्यार की भीख मांग रही होंगी। हम लोग थोड़े से रॉयल भिखारी बन गए हैं, रॉयल भिखारी कह सकते हैं। सब एक दूसरे से प्यार की डिमांड कर रहे हैं। पति क्या कहते पत्नी के लिए, थोड़ा सा भी प्रेम से नहीं बात कर सकती क्या ये, हर समय चिल्ला की बात करती है। या पत्नी सोचती है, अरे मेरे से दो मिनट तो प्यार से बात कर लेते ना, हमेशा खाना बनाती हूँ, बहुत अच्छे से खाते हैं, आज नमक ज्यादा डल गया तो आज चिल्ला रहे हैं, रोज क्यों नहीं बोला कुछ कि बहुत अच्छी सब्जी बनाती हूँ, आज डली ना मिर्ची, आज डला ना ज्यादा नमक तो चिल्ला रहे हैं। थोड़ा प्रेम से इस बात को बोल देते तो क्या हो जाता, कैसे बोलेंगे बताइए। अब मान लीजिए आपको अभी खांसी आ रही हो, अब अभी मान लीजिए पानी मैंने नहीं पिया, आपको लगता है पूरा लेक्चर भी सुनना है, बहुत तेज खांसी आ रही हो, तो मैं आपको कहती हूँ आइए ये पानी पी लीजिए आप। मैं क्यों कहूंगी पानी पी लीजिए, क्योंकि मेरे पास पानी है, इसीलिए मैंने आपको पानी दिया, ऑफर कर दिया। मेरे पास नहीं होता तो मैं क्या कहती, बाहर है नल, है ना, ड्रिंकिंग वाटर है वहां पर, आप पी लीजिए, लेकिन मेरे पास था तो मैंने आपको ऑफर कर दिया। अब मान लीजिए मैं सोचती हूं कि माँ प्यार से बात करे, पिता प्यार से बात करे, भाई प्यार से बात करे, कोई सोचता है पत्नी प्यार से बात करे, पति प्यार से बात करे। अब अगर उनके पास प्यार है ही नहीं, तो प्यार है ही नहीं तो वो आपसे प्यार से बात कर पाएंगे। अब मैं भी डिस्चार्ज, वो भी डिस्चार्ज, अब डिस्चार्ज बैटरी डिस्चार्ज बैटरी को क्या देगी, तो क्या करना पड़ेगा बोलिए भी थोड़ा, जो बगल वाले सो रहे हैं ना उनकी भी नींद उड़ जाएगी, तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज करना पड़ेगा तो चार्जर से कनेक्शन, पावर हाउस से कनेक्शन। तो मेरे पिता जब प्यार के सागर हैं, तो मैं उनसे जुड़कर, मैं माना मैं आत्मा, उनसे जुड़कर अपने आप को चार्ज कर लूंगी, मैं प्यार से भरपूर हो जाऊंगी, और उस प्यार को क्या करूंगी, फिर बांटूंगी। सरल है ना ये तरीका, मैं सोचूंगी ना नहीं मैं प्यार से बात करूंगी, प्यार से बात करूंगी, यहाँ बहुत टेंशन है मेरे, तो यहां से भी जाएंगे तो सोचेंगे नहीं नहीं बिल्कुल प्यार से रहेंगे सबके साथ। एक संकल्प उठा है आपके अंदर, एक जागृति का संकल्प उठा है आपके अंदर, लेकिन इसको कंटिन्यू करना है तो आप मोबाइल को एक दिन चार्ज करते हैं कि रोज चार्ज करते हैं, कभी कभी दो टाइम, कभी कभी तीन टाइम भी कर लेते हैं, इतना क्यों चार्ज करते हैं मोबाइल को, क्या सोचते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, बाहर निकलना है। कम्युनिकेशन किसके साथ है, अपने साथ कि दूसरों के साथ, किसी का फोन आ गया तो, कई बार आप देखेंगे अभी एक घंटे किसी का व्हाट्सएप भी कोई आने वाला नहीं है मान लीजिए, लेकिन बार बार चेक करेंगे, किसी का नहीं आया ना कोई मैसेज, तो लगेगा मोबाइल तो खराब नहीं हो गया, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई, कितना अटेंशन है हमारा। लेकिन हम डिस्चार्ज हो गए इसके ऊपर हमारा अटेंशन नहीं हो पाता है। और कई बार जो बताया ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जो चलता है, कई रिलेशन इससे बिगड़ रहे हैं, और कई बार केवल एक संबंध, केवल एक संबंध, हमारे जिनके साथ संबंध अच्छे थे उनके साथ भी संबंध क्या करता है, बिगाड़ देता है। आजकल चाहे युवा हो, चाहे मतलब मैरिज के बाद के रिलेशन हो, क्योंकि बहुत लोगों से मिलना होता है, इसीलिए जिंदगी के सुने हुए अनुभव भी बहुत प्राप्त हो रहे हैं। आज सोचिए, सब चलता है, हम सोचते हैं नहीं, हमें भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है। और जब हम नैतिकता के, आध्यात्मिकता के अनुरूप चलते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि हमारी लाइफ है ना 200% लाइफ हो गई है। हम ये नहीं कह रहे आपको कि आप मटेरियल छोड़ दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे बढ़िया, आप सोफे में बैठे हैं, है ना, एसी चल रहा है, आनंद में बैठे हैं। यहाँ भी मटेरियल है, साधन है, लेकिन साधना पहले है। साधना और साधन दोनों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन 100% यदि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ होती है, तो जो मटेरियल हमारे पीछे पीछे आता है, उसका आनंद अलग ही होता है। लेकिन आज का इंसान भाग कहाँ रहा है? कहाँ भाग रहा है? मटेरियल के पीछे। और मटेरियल के पीछे भागते 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 उसकी उम्र कितनी हो जाती है? 60 साल। उसके बाद क्या सोचते हैं? क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य? ये सब मैं क्यों कर रहा था? बचपन में सोचा था 5th में मैं 1st डिवीजन पास हो जाऊंगी ना, तो पिताजी साइकिल ला देंगे, खुश हो गई। 8th क्लास में 1st डिवीजन आ जाऊंगी ना, तो ये चीज प्राप्त हो जाएगी। 12th में 1st डिवीजन आ जाऊंगी ना, खुश होते गए, खुश होते गए, और खुशी के मायने बदलते चले गए। खुशी अभी भी साइकिल चलाने में हो सकती है, अगर मन शक्तिशाली है तो। कोई जरूरी नहीं है कि कार ही हमें खुशी देती है, वो एक साधन है, सुख के है, लेकिन अंदर की खुशी, अंदर का आनंद, अंदर का जो प्रेम है, वो केवल बाहरी साधनों से प्राप्त नहीं होता है, उससे सुख मिलता है। तो उसका भी है ना प्रयोग कीजिए, लेकिन आध्यात्मिकता क्या है उसको समझना जरूरी है। दैनिक जीवन में मैं ध्यान और आध्यात्मिकता को कैसे महत्वपूर्ण स्थान दूं? आध्यात्मिकता कोई धर्म नहीं है, और अगर हम धर्म को भी सही रीति समझें, तो धर्म मतलब धारणा, और आध्यात्मिकता यानी भी नैतिकता की धारणा। मैंने क्रोध किया, अभी अंदर की खुशी गायब हो गई। मैंने अभी जिसके ऊपर क्रोध किया उसको कहा सॉरी, मतलब मेरे मुख से ऐसे शब्द निकल गए, तुमको तकलीफ भी हुई होगी, मैं शब्द तो वापस नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मुझे क्षमा कर दो। उसने भी कह दिया नहीं नहीं कोई बात नहीं, उनको लगा इतने बड़े होकर के भी मुझसे माफी मांग रहे, प्लीज ना भूल जाना उस बात को। नहीं नहीं दीदी कोई बात नहीं, ठीक है। रिलेशन क्या हो गए 1 मिनट के अंदर? अच्छे हो गए, लेकिन मेरे शब्द वापस मैं नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं क्षमा तो मांग सकती हूं। और क्षमा मांगकर मुझे हल्कापन लगा, मैंने उनसे प्रेम से बात की, हल्का लगा, क्योंकि मुझे आध्यात्मिकता की समझ है कि आध्यात्मिकता माना प्रेम है, रूहानी प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम कह सकते हैं। तो मैं उस लिंक में जा रही थी कि प्रेम को केवल बाहरी दुनिया में जो प्रेम चल रहा है या समझते हैं लोग, वो नहीं है। प्रेम माना किसी को अपने पैरों पर खड़ा कर देना, किसी को सही समझ देना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझसे पूछा गया था ना जब प्रेम के बारे में मैं कहीं गई थी कि आप किस बात को स्थान देती हैं, तो मैंने कहा प्रेम। मैं 1 मिनट के लिए भी गुस्सा कर लूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मैं 1 मिनट में उससे फिर प्यार से बात करने लगती हूँ कि उस बात को भूलना है और हम लोग को मिल के संगठन को मजबूत बनाना है। क्योंकि मैंने बचपन में कबीर दास जी के दोहे पढ़े थे, ब्रह्मा कुमारीज में तो प्यार का सागर परमात्मा ही मुझे मिल गया, तो मेरी खोज खत्म हो गई। सुनती थी पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए, या कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं, सी सुतारे भूई धरे तब बैठे घर मही, यानी भगवान का घर प्रेम का घर है, ढाई आखर प्रेम का। फिर गीत भी सुने कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी हुई चलती रहे, खुशी मिले अगम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। ये गीत चला गया अंदर, हमें नहीं बदलना है। कहते ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है। अच्छा, सब झूठ बोल के आगे बढ़ रहे हैं, सब नैतिकता का पतन कर रहे हैं, जो बहुत बॉस के आगे 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 करते हैं उनको खुश करते रहते हैं, वो उनका प्रमोशन हो गया और हम तो बॉस के आगे आगे गए भी नहीं, हम वहीं के वहीं रह गए। तो शायद कलयुग के समय में ये करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। अभी एक भाई ने मुझे पूछा कि दीदी आप कब आए हैं, कब से आए? तो मैंने कहा 16 तारीख से आई हुई मैं यहाँ पर। बोले दीदी दिखे नहीं, अब भी की बात है। मैंने कहा मैं पीछे बैठ जाती हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं वो कैमरा घूमे और वो कैमरे में मैं दिखूं, ऐसा मुझे कोई शौक नहीं है। मतलब एक दिल की बात बताई, मैं पीछे बैठी रहती हूँ आराम से, परमात्मा महावाक्य सुनती हूँ, मुरली सुनती हूँ, और मुरली सुनते सुनते कभी थोड़ा प्राणायाम भी कर लेती हूँ, कपाल भाती बढ़िया सुखासन में नीचे बैठती हूँ। अच्छा दीदी जी 16 तारीख से आप आई हैं, पता ही नहीं चला। बस मुझे लगा, अंदर से लगता है मैं जो कर रही हूं, या आप भी आज इस थॉट को अपने अंदर स्थान दे दीजिए कि आप जो कर रहे हैं, मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए, ये अगर परमात्मा क्लिक कर दे और मेरी फोटो मुस्कुराते हुए आए तो उससे बड़ा एप्रिसिएशन तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि भगवान मेरे फोटो को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे वायरल होना है, सब मुझे देखें, ये कोई शौक नहीं है। लेकिन होता क्या है कि आप अच्छे कर्म करते हैं, करते जाते हैं लगातार, तो परमात्मा भी फिर हमारे लिए गीत गाता है कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो मैंने जो भी बातें आज आपको बताई, मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर बताई कि ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, और कभी इस दैनिक दिनचर्या में मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ, कभी होता तो है, कभी कभी हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो मुझे फील हुआ कि नहीं, मेरी बैटरी को मुझे और चार्ज करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरी बैटरी इतनी चार्ज है, प्रॉब्लम इतनी ही आई, तो नो प्रॉब्लम, मैं फेस कर लूंगी। बैटरी इतनी चार्ज हुई, प्रॉब्लम भी इतनी बड़ी आई, तो भी मैं फेस कर लूंगी। मेरी बैटरी इतनी ही चार्ज थी, प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई, तो मुझे प्रॉब्लम आती है। और कई बार हमें पता नहीं चलता कि हम कहां कहां अटैच होते हैं, और जब वो संबंध हमसे दूर हो जाते हैं या आगे की यात्रा की ओर निकल जाते हैं, माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, कई बार हमें लगता नहीं मैं फेस कर लूंगी इसको, फेस कर लूंगा इसको, लेकिन बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट है। मुझे ऐसा लगता है, सबके लिए अगर बात करूं तो आंतरिक रूप से बात को कह रही हूं कि माँ जैसा संबंध शायद न तो किसी का होता है, माँ माँ ही होती है, माँ माँ ही होती है। माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन उस परिस्थिति को भी फेस तो करना पड़ता है ना कभी न कभी, हर इंसान को। तो माँ के लिए भी किसी ने कहा है ना कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आत्मा कहते हैं, और जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और पिता के लिए भी कहते हैं कि चलते चलते न थके, ऐसे पिता के पांव उनसे मिलकर ऐसे लगे जैसे बरगद की छांव। तो मैं अपने अनुभव से सुनाती हूं कि ये दो संबंध मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण हो सकते क्योंकि उस संबंध में मैं गई नहीं हूं, पति या बच्चे या उस रिलेशन में मैं गई नहीं हूं। तो ये दो संबंध मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इस ज्ञान से, इस परिवार से मुझे समझ में आया, जो कल का लेसन आपका रहेगा, कि माँ भी एक आत्मा है, पिता भी एक आत्मा है। ये संबंध वर्तमान में मिला है, भाग्यशाली हूं ऐसे माता पिता मिले, लेकिन वो है एक आत्मा। अभी पितृपक्ष चला है ना, कई लोग बहुत कुछ कहते हैं बहनों से आके कि पितृ दोष चल रहा है दीदी हमारे ऊपर। आपको मैं गहराई से बता दूं, पितृ दोष हमारे ही गलत संस्कार जो उस आत्मा के साथ हमने बनाए हैं, यही पितृ दोष है। जीते जी माता पिता के साथ अच्छे से रहने, उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखा, उनके साथ बैठे नहीं, उनको वक्त नहीं दिया, उनके साथ प्यार से नहीं रहे, और जाने के बाद फिर माँ को ये पसंद था, पिता को ये पसंद था, बना रहे हैं और सब कुछ दूसरे को खिला रहे हैं। खिलाइए, मना नहीं कर रही हूं, लेकिन सबसे बड़ा पितृ दोष है कि हमारे अंदर एक प्यार के लिए ना सूखापन आ गया है। तो सूखी नदी नहीं बनी है, प्यार की बहती गंगा बनी है। और जब ये दिनचर्या में स्थान देना पड़ेगा, जब आप वो प्यार की बहती हुई गंगा बनेंगे, खास माता पिता, पत्नी, बच्चे, जो भी आपके रिलेशन हो, उनके लिए वक्त निकालिए। कहते हैं हर चीज है लोगों के दामन में, पर जिंदगी के लिए ही वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में अपनों के लिए ही वक्त नहीं। माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। गैरों की क्या बात करें जब अपने लिए ही वक्त नहीं। तो ये 5 दिन जो सत्र चलेंगे, इसमें आप अपने लिए समय निकालेंगे, अपने आप को चार्ज करेंगे, दिनचर्या में ध्यान को, आध्यात्मिकता को, यानी नैतिक मूल्यों को, गंभीरता, रमणीकता, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, अरे किस यही सब है। ऐसा थोड़ी कि केवल परिचय वालों को देख के हम मुस्कुराएं, मुस्कुरा दे सबको देख के, जो भी आए हैं बढ़िया। केवल मीडिया वालों को देख के थोड़ी, माताएं भी मिलेंगी, 8,000 माताएं आई हुई हैं, उनकी भी तपस्या चलेगी। सबको देख के बहुत प्यार भरी मुस्कान, आत्मिक मुस्कान और दृष्टि में आत्मिक प्रेम है ना। तो यहां से सीख के जाइए ये 5 दिन। ये मेरे साथ घटित होता है, मैं प्लेटफॉर्म में भी हूं, चक्कर लगा रही हूं, तो अनजाने भी लोग हैं। मैं मुस्कुरा देती हूँ, वाइट ड्रेस तो है ही, तो मुस्कान से परिचय हो जाता है ना हमारा। कोई जरूरी नहीं है घंटा बात करे, गुड मॉर्निंग कहे, गुड आफ्टरनून कहे, गुड इवनिंग कहे, लेकिन मुस्कान के साथ तो परिचय दिया जा सकता है। तो इसलिए दिनचर्या में खुशी को, आनंद को, प्रेम को, ध्यान के माध्यम से जो नदियां सूखी हुई हैं, उसको फिर से बहती हुई गंगा बनाया जा सकता है। तो लास्ट में हम 2 मिनट पुनः मेडिटेशन करते हैं। आज जो बातें सुनी, आपके दिन भर की दिनचर्या, आज ही शाम को रिसेप्शन सेशन है, कल इनॉग्रल सेशन है, उसके पहले मेडिटेशन सत्र रहेगा, तो मैं चाहूंगी एक भी सत्र आप मिस नहीं कीजिएगा। मीडिया के बारे में तो बहुत जानते हैं, लेकिन हमारे गवर्नर भी आ रहे हैं, तो हर एक सत्र आप जरूर 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 कीजिएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने प्लेस में जब जाएंगे, तो वहां ब्रह्मा कुमारी से जुड़ करके एक दिन ही कम से कम सप्ताह में है ना, गुरुवार हमारे यहाँ भोग रहता है, तो सेवा केंद्र पर जरूर जाइए और आध्यात्मिकता का लाभ उठाइएगा। तो मैं पहले मेडिटेशन करवा देती। कल आपको पूरा मैंने ये 5 दिन के सत्र पूरे मेडिटेशन के चलने वाले हैं, तो उसमें सारे जो प्रश्न आज उत्पन्न हो रहे हैं ये अलग से भी मिल लीजिएगा मुझसे स्टेज के पीछे, तो आपके पूरे समाधान हो जाएंगे जो भी प्रश्न चलेंगे। क्योंकि हमारे एक थॉट कहते हैं, प्रश्न चित्त कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, तो प्रश्नों की हलचल भी क्या होनी चाहिए, है ना, समाप्त। तो जरूर ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि 5 दिन में आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा। ओम शांति। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, अनुभव कीजिए कि आज जो चिंतन मैंने सुना, खुशी, प्रेम, आनंद, विचारों की स्पष्टता, नैतिकता का समावेश, यही आध्यात्मिकता है। और हम सभी कुछ पल जरूर निकालें और फिर कर्म योगी बने। योग को, ध्यान को कर्म में शामिल कर लें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मुझे जीवन की हर परिस्थिति से प्यार है, चाहे वो सुख की हो या दुख के, मेरी आंतरिक शक्ति बनी रहे। इसी भाव के साथ सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे है, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख मिले उसके पीछे, दुख ही तो सहारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। स्वयं को हर परिस्थिति में मुझे संभालना, इसके लिए स्वस्थिति बहुत श्रेष्ठ बनानी है। शांति शांति शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
सभी पुनः कर्तर ध्वनि से हमारी मधुर वाणी की धनी आदरणीय दीदी का अभिवादन करेंगे फिर से एक बार, और धन्यवाद कहेंगे दीदी को।